ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। कर्नाटक में कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के आरपीपी पार्टी के नेता जी जनार्दन रेड्डी ने अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया है। श्री रेड्डी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पत्नी अरुणा लक्ष्मी के साथ फिर से भाजपा में शामिल हुए हैं। जी जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी नेता बीएस येडियुरप्पा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। श्री रेड्डी ने कहा कि वे बिना शर्त भाजपा में शामिल हुए हैं और किसी पद की मांग नहीं है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 प्रत्याशियों की एक सूची जारी की है। राजस्थान में कोटा से प्रहलाद गुंजाल, अजमेर से रामचंद्र चौधरी और राजसमंद से सुदर्शन रावत चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से सी रॉबर्ट ब्रूस को चुनाव मैदान में उतारा है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने लोकसभा की सभी 17 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट से गद्दाम श्रीनिवास यादव पार्टी के उम्मीदवार होंगे। समझा जाता है कि पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा है। पार्टी नेताओं का मानना है कि इससे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के मुकाबले बीआरएस उम्मीदवारों के जीतने की संभावना अधिक है। बीआरएस ने 2019 में लोकसभा की 9 सीटें जीती थी, इनमें से 5 सांसद हाल ही में अन्य दलों में शामिल हो गए हैं। होली का त्यौहार देशभर में आज धूमधाम के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम से ब्रजमंडल तक पूरे प्रदेश में होली का उल्लास रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रात गोरखपुर में होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल हुए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने होली पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आज सवेरे आग लग गई। ये दुर्घटना भस्म आरती के दौरान हुई। पुजारी सहित 14 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इंदौर और उज्जैन के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उज्जैन के जिलाधिकारी नीरज सिंह ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रत्येक घायल व्यक्ति को 1,00,000 रूपये की सहायता राशि और निःशुल्क उपचार देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज पहली बार प्रस्ताव पारित कर गजा में इसराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम तथा बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की है। 14 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। इसराइल का सबसे बड़ा समर्थक अमरीका मतदान से अनुपस्थित रहा। संयुक्त राष्ट्र में अमरीका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने संघर्ष विराम प्रस्ताव पारित करने में देरी के लिए हमास को दोषी ठहराया और कहा कि असहमति के कारण अमरीका मतदान से अनुपस्थित रहा। पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के बाद से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसराइल हमास युद्ध में 2 भागों में विभाजित हो गया है। पेश किए गए 8 प्रस्तावों में से अब तक केवल 2 प्रस्ताव ही पास हो सके हैं। ये दोनों प्रस्ताव गजा पट्टी पर मानवीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित थे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग से मुलाकात कर हिंद प्रशांत और पश्चिम एशिया पर चर्चा की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री लुंग का सकारात्मक दृष्टिकोण दोनों देशों के संबंधों की शक्ति का स्रोत रहा है। डॉ जयशंकर ने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर श्री लुंग के दृष्टिकोण को भारत महत्वपूर्ण मानता है। दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए फिलीपींस ने चीन के राजदूत को बुलाकर विरोध दर्ज कराया है और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए चीन को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की धमकी दी है। फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन के तटरक्षक बलों ने शनिवार को फिलीपींस की एक असैन्य नौका पर पानी की बौछार कर नौका को क्षतिग्रस्त कर दिया। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबिडन की भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी मियामी मास्टर्स एटीपी 1000 टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गई है। उन्होंने सिमोन बोलेली और एंड्रिया वोवोसरी की जोड़ी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।